તારીખ 22/3/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 213 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 14 મૂળ કેસેટમાં ડિસ્ટર્બન્સ છે.
શાસ્ત્ર મેં તીન પરિણામી ક્યો લીએ, પરિણામી તો એક હી હૈ. સમય સાર 320 ગાથા જૈસેન આચાર્ય કી ટીકા લિયા કે નહીં લિયા. પારિણામિક ભાવ કે તીન ભેદ હૈ, શુદ્ધ પારિણામિક ઓર અશુદ્ધ પારિણામિક. અશુદ્ધ પારિણામિક કે દો ભેદ હૈ, ભવ્યત્વ ઓર અભ્યવત્વ. એ ભવ્યત્વ મેં સે નિકલી ભાવના હૈ, इसका भव्यत्व का परिपाक आया समीप में, ये भावना होती है. तो इस संसार में के चक्कर में परिभ्रमण करने वाले अनंत अनंत जीव है. एक अनंत नहीं है, अनंता. एक जीव की संख्या को अनंत लगाए ऐसे अनंत अनंत जीव है. उसी जीवों में, उस जीव राशि में कुछ एक जीव को जब भव्यत्व का परिपाक समीप होता है, जिसको शास्त्र में आसन्न भव्य कहने में आए हैं, उसको भव्यत्व पारिणामिक में से एक भाव स्फुरित होता है कि अरे बहुत परिभ्रमण किया, बहुत भटका में बहुत भटका, इतना रुला हूं संसार में जिसका कोई हिसाब नहीं है. अब मुझे ये मेरी भटकन है उसको शांत करनी चाहिए. मैं इससे थक गया हूं. जिसको भटकने का नशा चढ़ा है वो तो भटकते ही रहेगा, वो नशा में है. जिसको इस नशा उतरा, क्या नशा भी कभी उतरता है, तो कभी ये भाव आया कि मुझे अब नहीं भटकना है. ऐसा जो पुण्य है, क्या यह पुण्य भी रूढ़ी के अधीन आज हो गया है. लोग दूसरे दूसरे प्रकार के पुण्य का उपदेश देने लग गए हैं और उपदेश ग्रहण करने को तैयार हो गए हैं. ये रूढ़िगत पुण्य है, वास्तविक पुण्य नहीं है. क्योंकि इस पुण्य के फल में भोग उपभोग के संयोग मिलेंगे और उसी काल में जीव अपने परिणाम को बिगाड़ करके दुर्गति में चला जाएगा. देव इंद्र एकेंद्री भया, क्यों छेड़ाला में देव एकेंद्री क्यों भया, कि पुण्य योग वो सही पुण्य योग नहीं था. जो पाप के गड्ढे में धकेल दे उसको हम पुण्य क्यों कहे. ये पुण्य शब्द का अधिकारी भी नहीं है. कुंदकुंदाचार्य ने तो लिया है पुण्य पाप अधिकार में, कि पाप को हम कुशील कहते हैं और पुण्य को हम सुशील कहते हैं. संयम आदि का पालन होता है, इसलिए संयम पालो तो पुण्य होगा, पाप नहीं होगा. तो पुण्य को हम सुशील कहते हैं, लेकिन जो संसार में प्रवेश कराता है उसको सुशील कैसे कहें, प्रश्न किया कि नहीं किया आचार्य महाराज ने, कि जो संसार में दाखिल करे उसको सुशील कैसे कहा जाए. तो इस पुण्य को हम पुण्य नहीं कहते हैं, इस पुण्य को हम पाप कहते हैं. वही बात योगिंद्राचार्य ने की कि पाप को तो पाप सब कहते हैं, ज्ञानी जन होते हैं वो पुण्य को भी पाप कहते हैं. ये रूढ़िगत पुण्य की बात है. ये रूढ़िगत होकर प्रवर्तता है. अतः मानव की ग्रंथादिक से प्राप्त हुआ लगता है कि ये शास्त्र पढ़ने से समझ में आया कि वैसा करना वैसा करना वैसा करना, परंतु इसका मूल एक सतपुरुष ही है. ग्रंथ कहां से पैदा हुए, कि श्री गुरु से हुए. तो सब जो ग्रंथ में से जो बात आई उसका मूल कौन है कि इसका मूल तो सत्पुरुष है। इसलिए हम ऐसा जानते हैं कि एक अंश साता से लेकर के पूर्ण कामता पर्यंत के सर्व समाधि इसका सत्पुरुष ही कारण है। एक अंश साता अगर किसी को मिलती है, अगर किसी को पूर्ण समाधि मोक्ष होता है, पूर्ण शांति मिलती है, इसका कारण कौन है कि सत्पुरुष ही इसका कारण है। इतने बहुत समर्थता होने पर भी, इतना बड़ा सामर्थ्य होने पर भी जिसको कुछ भी स्पृहा नहीं है, वो कुछ लेना चाहते हैं नहीं है। इतना बड़ा सामर्थ्य है कि जिसके कारण से दूसरे का मोक्ष हो जाता है आगे जा करके, इतना निमित्तत्व जिसमें पड़ा है, जो निमित्तत्व तीर्थंकर देव में है उतना निमित्तत्व सत्पुरुष में है, इतना बड़ा सामर्थ्य है फिर भी उसको कुछ स्पृहा नहीं है, उसको कुछ स्पृहा नहीं, उन्मत्तता नहीं, क्या छलकते नहीं। इतना सामर्थ्य होने पर भी बाहर छलकते नहीं है, अपनत्व नहीं है उस सामर्थ्य में, अपनत्व नहीं है उस निमित्तत्व में, अपनत्व हम कुछ नहीं करते। क्या कहेंगे अज्ञानी, वो कहेंगे कि हम तुमको उपदेश देंगे, हम तुमको ज्ञान देंगे, हम तुमको संयम देंगे, हम तुमको पुण्य देंगे, हम तुमको मोक्ष देंगे। ज्ञानी कहते हैं कि हम कुछ देते नहीं है और मिल जाता है। ये क्या चमत्कार है, आश्चर्य है। इसलिए कहेंगे कि ये सत्पुरुष आश्चर्य की प्रतिमा है। बहुत शब्द निकाले हैं अपने भावों में से, बहुत लिखा है। उसमें अपनत्व नहीं, उसका गर्व नहीं कि हमने इतने को धर्म दिया, इतने जीवों को धर्म की लाइन पे चढ़ाया, इतने को सुखी कर दिया, इतने को चमत्कार से लाभ कर दिया, इतने को मंत्र दिया, कुछ गर्व करते हैं हम? कुछ है ही नहीं, कुछ करते ही नहीं, कर सकते भी नहीं है, वो सब विकल्प ही नहीं आता है। क्योंकि वस्तु स्वरूप की मर्यादा का ज्ञान है उसको कि लेना देना किसी का हो सकता नहीं है, उसको गर्व नहीं, गारव भी नहीं, थोड़ा भी अभिमान नहीं, ज्यादा तो अभिमान नहीं लेकिन थोड़ा भी नहीं। ऐसे आश्चर्य की प्रतिमा रूप सत्पुरुष को हम बार बार नाम लेकर के भी स्मरण करते हैं। एक सत्पुरुष में हालांकि तीनों काल के अनंत सत्पुरुष का समाविष्ट हो जाता है, समावेश हो जाता है, फिर भी कभी कभी जो प्रत्यक्ष उपकारी होते हैं उसका नाम लेकर भी हम वंदन करेंगे, नमस्कार करेंगे, स्मरण करेंगे उसका, सबों का। एक में अनंत का गर्भित है, एक के निषेध में अनंत का निषेध है, और एक के आदर में अनंत का आदर है। यही सिद्धांत है इसका, मान लेना जो कुछ है, सब समझ लेना अभी क्या बात, क्या परिस्थिति है, है? ऐसे आश्चर्य की प्रतिमा रूप सत्पुरुष को हम तो सत्पुरुष को कैसे देखते हैं, एक आश्चर्य की प्रतिमा दिखती है, क्या है, दंग हो जाते हैं उसको देख करके, दंग हो जाते हैं, कैसा सामर्थ्य है वह, फिर कैसे चलते हैं। उसका नाम लेकर भी हम स्मरण करते हैं। कैसे हैं सत्पुरुष कि त्रिलोक के नाश बस हुआ है। क्या किया उसने? अपने दृष्टि के कब्जे में तीन लोक के नाश को ले लिया है। आता है दृष्टि प्रकाश में, दृष्टि ने त्रिकाली पर कब्जा कर लिया है, है? तो तीन लोक का नाथ है अंदर में, त्रिलोकी नाथ बैठा है, उस पर कब्जा कर लिया है। अब ये कैसेट देखी बम्बई में, आप तो चले गए थे, हमको रुकना हुआ हफ्ते भर मुंबई में, तो बसंत भाई है दूसरी उषा बहन के भाई जो है ना, उनके यहाँ खाना खाने को गए थे, दो दिन काको पर ठहरे वहाँ, तो बहन श्री का कैसेट था, वीडियो कैसेट देखा हमने, सीमंदर भगवान के समोसरण में त्रिलोकी नाथ ने, सीमंदर भगवान मैंने त्रिलोकी नाथ ने श्री गुरुदेव के को तिलक किया। क्या किया? तिलक किया। तिलक कब करते हैं? राज्याभिषेक करते हैं ना, तो ऐसा एक तिलक किया था। वो समोसरण में विराजमान थे और गुरुदेव भी वहां पधारे थे, फतेह कुमार का भाव था उनका, तो भगवान ने उठ करके क्या तिलक किया कि ये घातुकी खंड के सूर्यकीर्ति नाम के तीर्थंकर होने वाले हैं, वो तिलक किया था उस वक्त। अब त्रिलोकी नाथ का तिलक कोई घिस करके मिटाना चाहेगा मिटेगा क्या? है निकालना चाहेगा तो निकलेगा क्या? है निकल सकता है क्या? ये तो त्रिलोकी नाथ का तिलक किया हुआ है, कोई मामूली घटना नहीं घटी है, ऐसी बात है। तो पामर प्राणी है, इस तिलक को पहुंचना चाहते हैं, इसका क्या सामर्थ्य है? इसका कोई सामर्थ्य नहीं। त्रिलोक के नाथ जिसको बस हुए हैं, ऐसे होने पर भी उतना सामर्थ्य है, तीन लोक के नाथ को कब्जे में रख सकता है, ऐसे होने पर भी ऐसी कोई अटपटी दशा से बरतते हैं कि जिसका सामान्य मनुष्य को पहचान होना दुर्लभ है। वो कैसे रहते हैं, बरतते हैं? जैसे अज्ञानी बरतते हैं वैसे बरतते हैं, अज्ञानी खाते हैं वैसे खाते हैं, अज्ञानी चलते हैं वैसे चलते हैं, अज्ञानी हंसते हैं वैसे हंसते हैं, अज्ञानी रोते हैं वैसे कभी रोते भी हैं। देखो सब जो प्रकार का है, उठना बैठना सोना सब सामान्य मनुष्य की तरह होता है, कोई विशेषता नहीं दिखाई देती। ऐसी अटपटी दशा से वर्तते हैं कि जिसका सामान्य मनुष्य को पहचान होना दुर्लभ है। ऐसे सतपुरुष को हम बार बार फिर फिर करके स्तमन करते हैं, इसकी हम स्तुति करते हैं। ये सतपुरुष होकर के सतपुरुष की स्तुति करते हैं। देखो सतपुरुष सतपुरुष की स्तुति करते हैं, फिर मुमुक्षु को क्या करना समझ लेना। एक समय भी केवल असंगपना से रहना, ये तीन लोक को वश करने से भी अधिक विकट कार्य है, ज्यादा विकट है, इससे भी ज्यादा विकट है। तीन लोगों को वश कर सकता है? एक परमाणु को भी नहीं कर सकता, एक जीव को नहीं कर सकता, अरे एक बच्चे को बस नहीं कर सकता, चार पांच साल का बच्चा होता है एक, मेरे मुझे ये खिलौना चाहिए, दूसरा देंगे तो वो खाकर फेंक देगा, नहीं चाहिए मेरे वो ही चाहिए, तो फिर माँ बाप को देना पड़ता है कि दो उसको, शांत नहीं होगा इसके पहले। एक बच्चे को भी शांत नहीं कर सकते हैं तीन चार साल के, तो तीन लोग को वश करना वो कितना विकट है। इससे विकट कार्य कोई है तो असंग रहना वो है। स्वरूप में एक समय भी असंग होकर के स्थिर हो जाना ये तीन लोग को वश करने से भी अधिक विकट कार्य है। ऐसे असंग पने से जो त्रिकाल रहे हैं, एक समय नहीं सभी काल में रहते हैं असंग भाव से, ऐसे सत्पुरुष का जो अंतःकरण है, क्या देखे देखते हैं अब श्रमुख जी, सत्पुरुष का अंतःकरण में पहुंच गए। सत्पुरुष के अंतःकरण में पहुंचे तो उसने क्या देखा कि अरे इसका अंतःकरण तो असंग दशा में रहा है, इसकी जो अंत परिणति है वो अंतःकरण है, वो तो असंग भाव में रहते हैं। एक समय भी असंग रहना वो तो त्रिलोक को वश करने से भी अधिक कठिन है, और ये तो निरंतर असंग दशा में रहते हैं अंतर में। ऐसे सत्पुरुष के अंतःकरण उसको देख करके हमें परम आश्चर्य का आश्चर्य प्राप्त होता है। क्या हम परम आश्चर्य पाकर के नम जाते हैं, झुक जाते हैं? सत्पुरुष के अंतःकरण को देख करके हमें परम आश्चर्य होता है और हम झुक जाते हैं इसकी परिणति पर। हैं झुक जाते हैं, हमारा नतमस्तक हो जाता है, हमारा हृदय है वो वहां नम जाता है, यही होता है। इसके अंतःकरण को देख करके ये हालत हमारी होती है। कैसा भक्ति किया है सत्पुरुष का ये परमात्मा, भगवान को संबोधित करते हैं। हम तो ऐसा ही मानते हैं कि इस काल में भी जीव का मोक्ष हो, क्या ये कृपालु देव के भावना का विषय है? उनका पुरुषार्थ उतना तेज चलता था गृहस्थ अवस्था में भी कि उसकी भावना बार बार यही कहती थी कि इसी भाव में मोक्ष जाना है, हम दूसरा भाव नहीं करेंगे। अगर कोई मरता है तो इसकी माँ रोती है, हम दूसरी माँ को रोने नहीं देंगे, दूसरा भाव हमारा नहीं होगा। जब हमारे हम हमारे स्वरूप में स्थिर हो सकते हैं कुछ समय के लिए, तो अंतर्मूर्त के लिए क्यों नहीं स्थिर होंगे, हो सकते हैं। इसलिए हे परमात्मा, हम तो मानते हैं, ऐसा ही मानते हैं कि इस काल में भी जीव का मोक्ष होता है, फिर भी ऐसा होने पर भी जैन ग्रंथों में, वर्तमान आगम में जैन ग्रंथों में क्वचित प्रतिपादन हुआ है, उस अनुसार, उस प्रमाण अनुसार, आगम अनुसार इस काल में मोक्ष नहीं होता है, जानते थे। अब देखिए यहां पर एक नई बात आपको समझने में मिलेगी। भावना वस्तु के स्वरूप की मर्यादा नहीं रखती है। क्या हुआ है, जो आगम है वो बात में मर्यादा है कि इस काल में यहां मोक्ष किसी का नहीं होता, लेकिन श्रीमद् जी की भावना ने उसका उल्लंघन किया है कि हम तो मानते हैं कि यहां से मोक्ष होता है। भावना वस्तु के स्वरूप की मर्यादा नहीं रखती। सही भावना ऐसी होती है जो वस्तु स्वरूप का उल्लंघन करती है हमेशा। दूसरा भी इसका सबूत है, जो जो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर के द्रव्य हुए उसको क्या भावना हुई कि संसार के सभी प्राणी को मैं इस शासन में ले जाऊंगा। सब जीव करु शासन रसी, क्या हो सकता है सब? अरे समोसरण में भी पूरे नहीं होंगे। समोसरण बाहर वाले को तो छोड़ो, जो समोसरण में आएंगे ने इन सबों का मोक्ष नहीं होगा। उसमें बहु भाग है वो मोक्ष में नहीं जाने वाले हैं, बहुत कम भाग है वो मोक्ष में जाने वाले हैं। तो सब कुछ में तो अभव्य भी आते हैं, तो क्या भगवान को अभव्य का ज्ञान नहीं था? भगवान को और भव्य भी कितने होते हैं कि जो अभव्य को भी आगे जाकर के हैं, अभव्य से भी बढ़कर के हैं, ऐसे भव्य होते हैं। ऐसे तीनों काल संसार में रुनने वाले कितने हैं कि अनंत अनंत हैं, है? तो भगवान को उतना पता नहीं था क्या? लेकिन भावना वस्तु स्वरूप की मर्यादा को नहीं देखते। तीर्थंकरों को ऐसी भावना होती है, तो श्रीमद जी को भी हुई, हुई तो हुई। ये भगवान के केवल ज्ञान का शर्म नहीं भरती है क्या? ये तो केवल ज्ञान में आया था क्या? आगे जो सर्वज्ञ हुए उसके केवल ज्ञान में तारों का भव्य भव्य अनंत है, जो उसका शासन में आना संभव नहीं। जैन शासन में वो आएंगे ही नहीं कभी, तीन काल में नहीं आएंगे। लेकिन इस केवल ज्ञान का इसकी शर्म पहुंचती नहीं है, ऐसी बात है। हे परमात्मा, हम तो ऐसा ही मानते हैं कि इस काल में भी जीव का मोक्ष होता है, फिर भी जैन ग्रंथों में क्वचित प्रतिपादन हुआ है तदनुसार यह काल में मोक्ष नहीं होता है, तो इस क्षेत्र में यह प्रतिपादन तू रख ले। ऐसा प्रतिपादन रखना है तो इस क्षेत्र की मर्यादा में रखो तुम, हमारे लिए कोई क्षेत्र की पाबंदी नहीं है। अगर हम मोक्ष जाना है तो हम दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे और वहां से मोक्ष जाएंगे। कुंदकुंडाचार्य गए कि नहीं महाविदेह में, तो हम क्यों नहीं जा सकते सदेह महाविदेह में? वहां जाकर के मोक्ष पाएंगे हम तो, इतना जोर आया है। ऐसी लब्धि आ जाएंगी हमारी मुनि दशा में, हम चले जाएंगे महाविदेह में और वहां से चले जाएंगे सीताले में। लाया महाविदेह, क्यों नहीं मोक्ष होगा हमारा? इसी भाव में मोक्ष होगा हमारा, ऐसी भावना है। इस क्षेत्र में के लिए ये प्रतिपादन तो रख ले, और हमको मोक्ष देने के बजाय सत्पुरुष का ही चरण का ध्यान करें और उसके सानिध्य में रहें, ऐसा योग दे देने, हमको मोक्ष की भी नहीं पड़ी है। हद कर दी है ने? है? हद कर दी है कि हमें मोक्ष की भी उतनी लालच नहीं है जितनी हमें सत्पुरुष के चरण की लालच है। हमको वहां रहना है, हमें मोक्ष में भी नहीं जाना है, जाओ। ये बात उन्होंने आगे भी कही है। देखिए 269 पत्र है, 269। हाँ, और इधर पृष्ठ संख्या है 299। दूसरी पंक्ति में लिखा है, मोक्ष से हमको संत की चरण समीपता बहुत प्रिय है। क्या इतना हमें मोक्ष नहीं प्रिय है जितने सत्पुरुष के चरण सानिध्य जो है वो हमें मिल जाए तो हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या लिखा, ये ओवरबाउंड है, सिक्सर लगाते हैं सीधे बाउंड्री के ऊपर जाते हैं, वो हद को उल्लंघन कर देते हैं। मोक्ष के आगे कोई अवस्था नहीं है, ये लिमिट है, तो कम इसके भी आगे जा रहे हैं तो। और वो इसके आगे कौन चीज पड़ी है, सत्पुरुष का चरण वहां है जो मोक्ष के भी आगे है। क्या रहस्य है उसमें, वो रहस्य भरा है कि सत्पुरुष का सानिध्य मिलता है तो सर्वस्व मिला है। क्या मिला, सर्वस्व मिलने से कोई चाह नहीं रहती, मोक्ष की भी चाह नहीं रही, चाह कोई नहीं रही तो बात खत्म हो गया, सर्वस्व मिल गया उसको बस। ऐसी सत्पुरुष के प्रति एक दफे तो पागलपन की अवस्था आती है, कैसे जी पागल हो जाता है, समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलता है, लेकिन ऐसी एक चीज बनती है, ऐसी एक चीज होती है, फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति इसके बाद होती है, इसके पहले कभी किसी को न हुई है न होने वाली भी है।
इसे प्रीति भक्ति कहते हैं, इसे ही प्रीति भक्ति कहते हैं।
हाँ, उसको भक्ति प्रेम रूप भक्ति कहते हैं, प्रीति रूप भक्ति कहते हैं, अनन्य भक्ति कहते हैं, आश्रय भक्ति कहते हैं, पराभक्ति कहते हैं, ये सब प्रकार की भक्ति कहने में। हाँ, आश्रय भावना तो परोक्ष होती है, तो भावना होती है कि मैं इसके चरण में पहुंचू, ये आश्रय भावना है। हाँ, प्रत्यक्ष में तो भावना का सवाल नहीं है, प्रत्यक्ष में तो भक्ति ही आती है ऐसे। क्या कहते हैं कि हमको मोक्ष देने के बजाय सतपुरुष के ही चरण का ध्यान करें हम और उसके समीप ही रह जाए, ऐसा कोई योग दे दे हमें। हे परमात्मा, हम तुझसे मोक्ष की याचना नहीं करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे तो सतपुरुष के चरण सानिध्य की ही प्रार्थना करेंगे। हे पुराण पुरुष, अब अपनी आत्मा को कहते हैं पुराण पुरुष, अपना अनादि से जो आत्मा पुराना है उसको संबोधन करते हैं कि हे पुराण पुरुष, मैंने अपनी आत्मा, हम तो तेरे में और सतपुरुष में कुछ भेद हो ऐसे समझते नहीं है। क्या कहा है, तो देखिए यहां थोड़ा एक अध्यात्म का जो सिद्धांत होता है उस सिद्धांत के लड़ाई है वहां इधर, कि ये सतपुरुष तो परद्रव्य है, सतपुरुष तो निमित्त है, और हमने हमारी आत्मा तो उपादान है, तो कि ऐसा भेद हमारे मिट गया है। क्या ये नया प्रकरण है, नहीं चलता है आजकल हमारे तत्वज्ञानियों में भी ये बात नहीं चलती है, बड़े बड़े विद्वानों भी इस बात से, इस प्रकरण से अनभिज्ञ है, अनजाने हैं, ऐसा कोई ये नया प्रकरण है। आत्मा की बात करने वाले भी इस बात में नहीं जानते, ये रहस्य है, रहस्य का भी रहस्य है, बहुत खुला है। हे पुराण पुरुष, हे पुरुष पुराण, हे आत्मा, हम तो तेरे में और सतपुरुष में कुछ भेद होता है ऐसे समझते ही नहीं है, हमारी समझ कोई अलग है। अरे तेरे बजाय तो, तेरे से तो भी हमको तो सत्पुरुष में विशेषता लगती है। ठीक। देखो, कारण के तू भी उसके अधीन रहा है, उसने तेरा कब्जा किया तो तू बड़ा या वो बड़ा, हम तो दिखाओ, तुम बताइए क्या कौन बड़ा है। ये आत्मा का कब्जे करने वाला तो सत्पुरुष है, तो बड़ा तो वो है, इसलिए हम तो तेरे से भी उसको अधिक मानेंगे। और हमें सत्पुरुष को पहचाने बिना तुझको भी पहचान नहीं सके हम। क्या सत्पुरुष की पहचान बिना शुद्धात्म स्वरूप की पहचान हुई नहीं, होगी नहीं किसी को। तो तेरे से तो ये बड़ा है, क्योंकि तू अपनी पहचान देने में समर्थ नहीं है। वो सामर्थ्य सत्पुरुष में है कि जो तेरी भी पहचान वो कराता है, इसकी भी कराता है और तेरी भी कराता है। जबकि तेरे में तो अपने स्वयं की पहचान कराने का सामर्थ्य नहीं है, उसके लिए तो सत्पुरुष चाहिए। सत्पुरुष के पहचाने बिना तुझे भी पहचान सके नहीं, यही तेरा दुर्घटपना है, यही तुम्हारी तो कठिनाई है। पर यही कठिन, ये तुम्हारी दुर्घटता है। शक्ति का जिन्हें होने से उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष मैंने स्त्री पुरुष वाली बात नहीं है, सभी आत्मा पुरुष ही है। आत्म कार्य करने का पौरुष माने पुरुषार्थ होने से सभी आत्मा जन है एक पुराण पुरुष ही है। ऐसे अपने स्वरूप को प्रारंभ में नमस्कार किया है। यह लोक त्रिविधताप से आकुल व्याकुल है। संसार में सभी जीव आदि व्याधि उपाधि तीन प्रकार के दुख से बहुत अकुलांक में है, बहुत दुखी है। उस दुख मिटाने के लिए वो गांगुआ का पानी, क्या कहते हैं आप, अगर क्या हिंदी में लिखा है गांगुआ का पानी, वो जो गर्मी के दिनों में पानी दिखता है ना, पानी नहीं होता है लेकिन बहुत ताप गिरने से उसको पानी बोलते हैं। इसमें हिंदी क्या किया है, हिंदी ने कौन से शब्द का प्रयोग किया है, मृग मरीज का पानी,
मृत रत्ना, मृत रत्ना,
हाँ हाँ। क्या है कि जो मृग है मरीज है वो तृषा उसको लगती है गर्मी के दिनों में, पानी नहीं है ना पानी दिखाई देता है, कितना पानी दिखाता है दिखता है ना उनको, तो जैसे कोई सरोवर भरा हो, सरोवर की लहरें दिखती हैं उसको, दौड़ता है पानी पीने को, पानी मिलता नहीं, पानी है नहीं वहां, तो आगे आगे दिखते रहता है। दिखने का कारण कुछ अंतर है, उसी अंतर में उसको दिखता ही रहता है, दौड़ 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 करके मर जाता है, उसको पानी एक बूंद भी मिलता नहीं, क्योंकि पानी है नहीं ना, मिलेगा कहां से। उस तरह से संसार के जो सुख आभास रूप भाष्यमान होता है उसको प्राप्त करने के लिए संसारी प्राणी दौड़ लगाता रहते हैं, जीवन भर दौड़ लगाता है।
लेकिन उसको सुख का एक बूंद भी नहीं मिलता। सुख तो नहीं मिलता, दुख बहुत होता है उसको, उपाधि का दुख, टेंशन का दुख, और फिर व्याधि भी आ जाती है। वृद्धावस्था में तो व्याधि भी आ जाएगी, उपाधि भी बढ़ जाएगी और पूरा दुख ही हो जाएगा। ऐसे मृद मारीच के जल को लेने दौड़े तृषा छुपाने इच्छते हैं, तृषा छुपाने का इच्छा रखते हैं, ऐसे दीन में कैसे में ऐसे दीन में जो परमाणु में सुख नहीं है, ऐसे परमाणु के पास सुख की भिक्षा मांगता है। क्या करता है वो? वे पैसे के परमाणु मुझे सुखी कर दे, वे शरीर के परमाणु मुझे सुखी कर दे। दीन है, मैंने बहुत कंगाल होकर के भीख मांगता है कि मुझे सुखी कर दे, जैसे कैसे भी मुझे सुखी कर देते, ऐसे दीन है। अज्ञान के कारण स्वरूप का विस्मरण हो जाने से भयंकर परिभ्रमण उसे प्राप्त हुआ है। क्या हालत बनी है कि अज्ञान के कारण अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया है। मैं एक शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, असंग तत्व हूं, किसी का संग मुझे है ही नहीं। अकेला जन्म होता है, दुख भी संसार में अकेला ही पाता है, कोई किसी के दुख में भागीदारी कर सकता नहीं है। बिच्छू की वेदना होती है ना, बिच्छू काटता है, कोई बच्चे को बिच्छू काटा उसको पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, वेदना होती है, इसकी मां को जो है बहुत दुख होता है, लेकिन इसकी पीड़ा वो ले सकती है क्या?
नहीं।
उसमें से कुछ पीड़ा का अंश उसने अपने आप में ले सकती है क्या? दुख भी अकेला भोगता है, मरता भी अकेला है, दुर्गति में अकेला जाता है, अगर मोक्ष में जाएगा तो भी अकेला जाएगा। तो एकत्र भावना है, बार भावना में ये एकत्र भावना है, अकेला ही अकेला है। ऐसा अपना स्वरूप का विस्मरण हो जाने से, क्यों, क्या कारण से विस्मरण हुआ? अज्ञान के कारण विस्मरण हुआ है। और क्या इसका परिणाम हुआ कि भयंकर परिभ्रमण प्राप्त हुआ। भयंकर परिभ्रमण मेरे बहुत दुख है, ऐसा परिभ्रमण खास करके जीव तेज गति में जाता है, कभी एक इंद्री, कभी दो इंद्री, कभी तीन इंद्री, कभी चार इंद्री में इतना दुख पाता है, इतना दुख पाता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं कर सकता। ऐसा भयंकर परिभ्रमण को प्राप्त हुआ है। प्रति समय 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 पर अतुल खेद, जिसकी तुलना नहीं कर सके इतना दुख है, अतुल खेद, ज्वरादिक रोग, रोग होता है, अनेक प्रकार के रोग होते हैं, मरणादिक का भय, मरण का भय, अकस्मात का भय, वेदना का भय, आलोक का, अनेक प्रकार की प्रतिकूलता का भय, परलोक की दुर्गति का भय, सभी भय से भयान्वित है, दुखी है, योगादि के दुख को अनुभवता है और जो प्रिय पदार्थ है उसका वियोग हो जाता है, उसके दुख का अनुभव करता रहता है। ऐसी अशरणता वाला इस जगत को कोई शरण नहीं है, उसको दुख के छुड़ाने के लिए किसी के शरण में वो जाएगा संसार में, कि कोई शरण नहीं है। ऐसी अशरणता वाले इस जगत को एक सतपुरुष ही शरण है। कौन शरण है उसको? एक सतपुरुष ही उसको शरण है, चाहे वो ज्ञानी हो, गृहस्थी हो, चाहे मुनिराज हो, चाहे तीर्थंकर भगवान अनंत देव हो, यही शरण है, और कोई शरण नहीं है। ये तीनों जीवंत स्वामी है, ये तीनों जीवंत स्वामी है। जो उनको उनके दुख को मिटाने का निमित्त को धारण किए हुए हैं, क्या कुछ लेते लेते नहीं? विकराग परमेश्वर विनेन्द्र परमात्मा कुछ देते नहीं, कुछ लेते नहीं। ऐसे महामुनिराज है, वो भी वितरागी संत है, ये भी कुछ लेते देते नहीं है। और ज्ञानी है, उसको भी लेना देना नहीं है। फिर भी इसके बोध से, उसके सानिध्य से उनको साता का सुख मिलता है। कुछ साता उसको मिल सकती है तो वहां मिल सकती है, और कोई जगह साता का है नहीं। ऐसी अशरणता वाले इस जगत को एक सतपुरुष में शरण है। सतपुरुष की वाणी बिना कोई यह पाप और कृपा छेल सकता नहीं है। इस दुख को अभाव करने के लिए एक सतपुरुष की वाणी है, उसको शरणभूत होती है। ऐसा निश्चय है, ऐसा हमारा निश्चय है कि दुख को मिटाने के लिए दूसरा कुछ इलाज है नहीं संसार में, ऐसा निश्चय है। इसलिए बार बार जो सतपुरुष के चरण का हम ध्यान करते हैं, क्या करते हैं? सतपुरुष के चरण का ध्यान करते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादम। विनोद जी, इतना तो अनुमति भी समझते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, क्या मंत्र देते हैं सुखी होने का। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जिसके पर सतपुरुष की कृपा हो गई उसका निवेदन हो गया। कहते हैं जी,
वो सतगुरु कौन है?
वो सतगुरु तीन प्रकार के होते हैं। परम गुरु है जिनेन्द्र परमात्मा अरिहंत देव, फिर नंबर आता है निर्ग्रंथ मुनिराज का, जो बाह्याभ्यंतर निर्ग्रंथ दशा में विचरते हैं, जिसको दृढ़ क्षेत्रकाल भाव का कोई प्रतिबंध नहीं होता। और तीसरे होते हैं ज्ञानी परमात्मा। कैसे? ज्ञानी परमात्मा, धर्मात्मा नहीं, परमात्मा, तीनों ही परमात्मा है। धर्मात्मा को सब कहते हैं, श्रीमद जी इसको परमात्मा कहते हैं, अमृत चंद्राचार्य भी कहते हैं। वो तो एक कहेंगे तो सब कहेंगे। जो एक सतपुरुष ने, ज्ञानी ने कहा, ये सभी निर्ग्रंथ आचार्यों ने कहा, ये अनंत तीर्थंकरों ने कहा, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये तो शंका होती है, उसको सबूत दिलाना पड़ता है। जिसको शंका नहीं है वो तो उसको ब्रह्म वाक्य ही मानते हैं। भगवान के वाणी को भी जिनवाणी कही जाती है, आचार्यों के वाणी को भी जिनवाणी कहते हैं, और सत्पुरुष की वाणी को भी जिनवाणी कहने में आता है। यही बात है, क्योंकि तीनों के एक ही वाणी है, तीनों के वाणी में कोई अंतर नहीं, एक ही आशय से चली है वाणी। ये पवित्र गंगा में कहीं भी अपवित्रता नहीं है, सच्ची तो गंगा देख रहा वाणी है कि नहीं। इसलिए बार बार जो सतपुरुष के चरण का हम ध्यान करते हैं, इस पत्र में कुछ विशेषता है तो वो है कि सतपुरुष के कितनी प्रधानता देते हैं। और क्यों अनंत भगवान से भी और निर्ग्रंथ गुरु से भी सतपुरुष की प्रधानता दिया है इस पत्र में, और इसके पीछे क्या रहस्य है ये समझने की चीज है। इसलिए पत्र है, प्रयोजनभूत है। आगे कल तो बात चल चुकी कि हमारे पंच परमिष्ठ अनादि महामूल मंत्र में पहले अरिहंत भगवान का नमस्कार लिया गया है, बाद में सिद्ध भगवान का लिया गया है। जबकि दशा के हिसाब से सिद्ध भगवान उच्च दशा में विराजमान है, परिणत दशा में तो अब संसारीपना है क्या? अगर जीवों का डेली वर्ग दो क्लास करने में आए तो एक संसारी और एक सिद्ध। दिखाओ बनारसीदास जी ने, बनारसीदास जी ने परमार्थ मचने का मैंने लिखा कि इस जगत में दो प्रकार के जीव हम देखते हैं, एक संसारी और एक सिद्ध। तो जो सिद्ध है वही, बाकी के सब संसारी। 14 दिन स्थान तक संसार लिया है, केवल भी संसारी है। उनको ये निष्कर्म अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, उस कर्म अवस्था में है, अपने कर्म को आदि आदि को भोग रहे हैं, और उस भोगने में वो बेबस है, अपनी चलती नहीं है। अनंत भी ये प्रकट हुआ है, कितना पुरुषार्थ है उनके पास, अनंत। लेकिन ये अघाती को भी हटा नहीं सकते हैं, घाती को तो मारे फिर भी अघाती को हटा सकते हैं नहीं है। देखिए समुद्र भगवान को 1 करोड़ पूर्व का आयु से, इसमें 16 लाख पूर्व अरिहंत दशा का है, इसमें एक समय भी वो कम कर सकते हैं नहीं है। तो इसमें सिद्ध भगवान की अवमानना नहीं है क्या? इसमें पारमार्थिक रहस्य है। क्या पारमार्थिक रहस्य है? कि अरिहंत भगवान का सानिध्य हमें प्रत्यक्ष मिल सकता है, जबकि सिद्ध भगवान का सानिध्य हमें प्रत्यक्ष मिल सकता नहीं है। हालांकि ये महामंत्र किसी ने बनाया नहीं है अनादि होने से, अगर किसी ने बनाया होता तो हम कहते कि कोई पक्का स्वार्थी है कि जिसकी प्रत्यक्षता मिलती है उसको बड़े नमस्कार करता है, जिसकी प्रत्यक्षता नहीं मिलती है उसको पीछे रखते हैं, भले ही बड़े हो हमें क्या लेना देना बड़ों से, क्या बड़ों से हमारा मतलब नहीं सकता, क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं होते और ये प्रत्यक्ष हो रहे हैं, इसलिए पहले इसका नमस्कार कर दिया।
अन्य मत में भी दिया है तो
हाँ, दोनों खड़े किसको लागू पाए, भले हरि गुरु गोविंद की, जिसने गोविंद दिनों दिया बताए। वही कहेंगे यहाँ कि हे परमात्मा तेरा ज्ञान हमने किसको कराया, कि तेरा ज्ञान सतपुरुष ने कराया, इसलिए हम उसको पहले नमस्कार करेंगे, ऐसा करके लिखे हैं। बहुत लिखा है, कलम तो गजब की चलाई है। इधर इसलिए बार बार यह सतपुरुष के चरण का हम ध्यान करते हैं, संसार केवल असातामय है, कोई भी प्राणी केवल असातामय है, किसी को सुख नहीं है, ऐसा कहते हैं। सही बात है, ये प्राइम मिनिस्टर को सुख नहीं है हिंदुस्तान के, या अमेरिका के प्रमुख को, प्रेसिडेंट को सुख नहीं है क्या? सबसे ज्यादा दुखी है। इसके लिए हजार दो हजार बॉडी गार्ड चाहिए, क्योंकि उसके अगल बगल में 5 किलोमीटर में व्यवस्था रखनी पड़ती है और उतने साधन रखने पड़ते हैं, फिर भी उसको नींद आती नहीं है, जबकि एक मजदूर को नींद आ जाएगी अच्छी तरह, धूप में भी सो जाएगा और ये एयर कंडीशन में भी नहीं सो पाएगा। पैसे वाले सुखी है कि नहीं है? हाँ, मानते हैं, लेकिन वास्तव में सुख है कि नहीं है? मानने से क्या होता है? हम मान ले वो दारू पीते ने, मदिरा पीते हैं, मानते कि हम स्वर्ग में पहुंचे, अभी स्वर्ग का सुख हमको मिल रहा है, क्या स्वर्ग का सुख मिला है उसको? नशे में है, ऐसे मानने वाले नशे में है, पैसे के नशे में है। नशे में तो कुछ भी बक सकता है, नशे में तो बक सकता है, बकवास है और क्या है, ऐसा मानना एक बकवास है। बहुत दुख है उनको, कई प्रकार की उपाधियां, और आजकल तो कितने लफड़े होते हैं, इनकम टैक्स का, फलाने टैक्स का, वेल्थ टैक्स का, और डेथ टैक्स का, कुछ भी, कहीं सुखी नहीं है। कथनचित का मतलब कोई ठिकाना नहीं है क्या जैन धर्म का? नहीं, सब जगह कथनचित लागू नहीं होता, और कथनचित होने पर भी जिस अपेक्षा से जो बात कहने में आती है, उस अपेक्षा से 100% रूप है।
ऐसे अगर गरीब आदमी की अपेक्षा अमीर आदमी सुखी है, गरीब आदमी की अपेक्षा अमीर आदमी सुखी है, सभी में कथनचित
नहीं, बिल्कुल नहीं,
ज्यादा
दुखी है, ज्यादा उसके उपाधि ज्यादा है, उसको उपाधि कम है, यानी जिसके जिसकी जरूरत ज्यादा उसका उसका दुख ज्यादा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसका हिसाब ऐसा है कि जिसकी दीन वृत्ति ज्यादा है, बहुत चाहिए, ज्यादा चाहिए, वो बड़ा भिखारी है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। इसका नाप अमीर गरीब से नहीं होता, संयोग से नहीं होता, इसकी वृत्ति से होता है, इस तरह से है।
सापेक्ष सुखी कहो तो कहो, लेकिन निरपेक्ष सुखी नहीं है। सापेक्ष सुखी कहो तो कहो,
नहीं सापेक्ष भी क्या, यहाँ तो केवल असतामय, केवल दुखी, ज्ञानी की नजर में वो पूरा दुखी है, ज्ञानी की नजर में वो पूरा दुखी है। कथनचित को दूसरा संबंध दिखाने के लिए है। देखिए, एक पुत्र है, वो अपना पिता के हिसाब से पुत्र है, और वही अपने पुत्र के हिसाब से पिता है, 50-50% है क्या? बड़ी आपत्ति खड़ी हो जाएगी। इसका आधा पिता है क्या? पर वो पिता है, वो अपना पुत्र का आधा पिता है, खुद क्या? खुद न आधा पुत्र है, न खुद आधा पिता है। पुत्र है तो भी अपने पिता का 100% पुत्र है। अपने पिता का पुत्र कितना है? 100% पुत्र है, और अपने पुत्र का पिता भी 100% है, 1% भी कम नहीं कर सकते। तो कथनचित माने क्या हुआ? 100% हुआ कि नहीं हुआ?
कथनचित में 100% हुआ कि नहीं हुआ, कि 100% ऐसे स्वरूप से हम सीध स्वरूप है, 100 के 100% है। हमारे मूल स्वरूप से हम सिद्ध पद स्वरूप है, वो कितने हैं कि 100 के 100% है। और संसार में संसारी जीव दुखी हैं कितने कि 100 के 100% है। ऐसी बात है, वहां कथनचित लगाया जाता जिस अपेक्षा से जो बात कहने में आती है उस अपेक्षा से वो पूरी की पूरी 100% है। आता है दृष्टि प्रकाश में आता है, वो न्याय लिया कि नहीं सुगा नहीं लिया। इसलिए केवल शब्द का प्रयोग है, संसार कथनचित असाता मैं ऐसा लिखा
नहीं, केवल
संसार केवल असातामय है। कोई भी प्राणी को संसार में अल्प भी साता है, यह भी सत्पुरुष का ही अनुग्रह है। ठीक है, अभी कोई मुमुक्षु को, कोई आत्मार्थी को अपनी योग्यता आई, सुपात्रता आई और सत्पुरुष के उस पर कृपा हुई, कृपा हुई मैंने प्रसन्नता हुई, ऐसे सुपात्र जीव को देख करके सत्पुरुष का चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो कहते हैं कि इस पर गुरु का अनुग्रह है, सत्पुरुष का अनुग्रह हुआ है, वो कुछ सुखी है संसार में। क्या सुखी है कि उसको सुखी होने की लाइन मिल गई है। वो सुखी होने के लाइन पे चढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा और पूरा सुखी हो जाएगा। इसलिए अगर कोई भी प्राणी को अल्प भी साता है, यह ही सत्पुरुष का ही अनुग्रह है, दूसरे कोई बात उसमें नहीं है, संसार की कोई बात नहीं है उसमें। कोई भी प्रकार के पुण्य बिना साता की प्राप्ति नहीं है। इस प्रकार का पुण्य लेना हो, ये उपाधि वाला नहीं, इसी प्रकार का जो कोई पुण्य होता है जिसमें कोई महापुरुष का प्रत्यक्ष योग प्राप्त होता है, ज्ञानी का प्रत्यक्ष योग मिल जाता है, तो कोई भी प्रकार का मैंने इसी प्रकार का पुण्य बिना साता की भी प्राप्ति नहीं समझना है। और यह पुण्य भी सतपुरुष के उपदेश बिना किसी ने जाना नहीं, इस प्रकार का पुण्य का ज्ञान भी सतपुरुष के उपदेश से मिलता है। वरना पुण्य का ज्ञान मिलता है पापानुबंधी, पुण्य का ज्ञान मिलता है संसार में। हर संप्रदाय में कहेंगे कि आप व्रत करो, प्रतिज्ञा लो, उपवास करो, दान दो, दया करो, पूजा करो, माला करो, भक्ति करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, जब तक करो, कहेंगे हर संप्रदाय में। कौन से संप्रदाय में वो बात नहीं है बताइए। जो भी आस्तिक संप्रदाय में अपने अपने सब रूढ़ी रिवाज चलता है, क्या होगा आपको, क्या आपको पुण्य मिलेगा, पुण्य की कमाई कर लो आप सुखी हो जाएंगे, यही चक्कर चलता है हर जगह। सही पुण्य कौन सा है, कैसा है, सत्पात्रता कहाँ है, दर्शन का अनुभव कैसे करता है, मुमुक्षु को ज्ञान में निर्मलता कैसे आती है अपनी भूमिका की, यह भी पुण्य सत्पुरुष के उपदेश बिना किसी ने जाना। पुण्य का भी ज्ञान नहीं, आत्मा का तो कहां से होगा, हाँ ये तो स्थूल चीज है, है? तो भी उसके पता नहीं है, तो फिर सूक्ष्म का तो पता कहां से लगेगा। बहुत काल से उपदिष्ट हुआ यह पुण्य रूढ़ि को आधीन होकर प्रवर्तित हो रहा है। ऐसा पुण्य था जिसमें सत्पुरुष का योग मिले, ऐसा पुण्य को रूढ़ियाधीन हो गया, फिर क्या रिवाज बन गया वो, और लोग दूसरे दूसरे क्रिया में पुण्य मानने लगे और करने लग गए, ये रूढ़ी रिवाज हो गया फिर पुण्य का। वास्तव में पुण्य दूसरी चीज है, ऐसा कहते हैं। देखो ये अव्वल धर्म की बात है, दूसरे प्रकार की बात है, ये जो संप्रदाय में चलती है ऐसी बात नहीं है।
ऐसा पुण्य का योग मिलने में कुछ आठ मास के संस्कार है,
किस
ऐसे सत्पुरुष का जो योग बना है उन है वो जो है धर्म नहीं है,
नहीं धर्म नहीं,
कुछ आठ मास के संस्कार है,
आत्मार्थी
आत्मार्थ के संस्कार पूर्व के जिज्ञासा के अपने पात्रता के,
हाँ हाँ
कुछ संस्कार है ऐसे जो ऐसा योग बना वर्तमान में,
ऐसा योग बना ये पुण्य योग बना।
हाँ जी,
तो इस पुण्य योग को सही पुण्य कहे कि आगे जाकर के वो तिर जाएगा, जिसके कारण से वो तिर जाएगा। इस बात तो ऐसी चलती है, रूढ़िगत बात ऐसी चलती है कि देखिए पुण्य है तो जैन धर्म मिला इसलिए पुण्य की जरूरत है, ऐसा करके बोलते कि नहीं बोलते, पुण्य की आवश्यकता है। वास्तव में कहते हैं कि सत्पुरुष का योग मिले यही सत्पुण्य है। सिंह के भाव में भगवान महावीर स्वामी के जीव को ये मुनिराज का योग मिला, ये सत्पुण्य है, इसका सत्पुण्य का उदय था, बस वही पुण्य है, पुण्य इसके आगे पुण्य को नहीं ले जाना।
योग से मिला ना, तो पूर्व में कैसा पुण्य का वो किया था उसने,
ऐसा ये बना वर्तमान में पहचान हुई सत्पुरुष की, ये बात बहुत अच्छी है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है,
है ना भाई, ये जाति का
है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए अभी किसी जीव की होनहार अच्छी है तो अज्ञान अवस्था में संसार अवस्था में भी किसी जीव को अपने आत्मा में से एक आत्म भावना पैदा होती है कि मुझे मेरा आत्म कल्याण कर लेना है, करना चाहिए, वरना मैं दुखी 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 संसार में दुखी हो जाऊंगा। ये भावना आत्मा में से निकली है, कर्म के उदय से नहीं निकली है, क्योंकि ऐसा कर्म कभी बांधा ही नहीं है जीव ने, जीव ने कर्म बांधा है वो संसार के लायक ही कर्म बंधन किया है, आत्मा के कल्याण होने लायक तो कर्म बंध होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो अकर्म निष्कर्म स्वरूप है, निष्कर्म अवस्था का कारण है वो। तो यह भावना कहां से हुई, आत्मा में से हुई, कर्मोदय में से नहीं हुई है, यानी ये पारिणामिक भाव में से हुई है, पारिणामिक।